الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعرات ہے، اور جمعرات کے دن ہمارے ہاں اوقات کا درس ہوتا ہے. اس درس میں کچھ بنیادی الہیات کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، اور اس کی آج کل ضرورت بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں علم کے جو ذرائع ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں، لیکن اصل علم لوگوں کے پاس کم ہے، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ ویسے بھی اگر طبیعت میں کجی ہو تو پھر اس کو راستہ ملتا ہے اور وہ غلط راستوں پہ پڑ جاتے ہیں، یا غلط اور گمراہ لوگوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اگر ابتدائی سے ان کو ان چیزوں کا جواب دیا جائے تو بچ جاتے ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے. فساد جو علم کی طرف سے آتا ہے نا، وہ بہت سخت ہوتا ہے. جہالت کی طرف سے جو فساد آتا ہے اس کا علاج بہت آسان ہوتا ہے، علم دے دو تو بس ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی، لیکن جو علم سے فساد آتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے مختلف میدانوں میں کام کیا ہے، الحمدللہ. جس چیز کی ضرورت انہوں نے سمجھی، انہوں نے وہ کام کیا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ماشاءاللہ اس وقت جو بہت زیادہ آوارگی تھی علم کی، اور تصوف کے اندر جو غلط چیزیں شامل کی گئی تھیں، اس کے جوابات دے دیے اور اس کی اصلاح فرمائی، جس کے لیے ہمارے اوپر ان کا بڑا احسان ہے. اس کے بعد حضرت کے مشن کو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمی لحاظ سے بہت زیادہ بلند کر دیا، چونکہ حضرت قرآن کی تفسیر میں اور احادیث شریف کے سمجھ بوجھ میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے. تو لہٰذا جو کشفی بنیادیں تھی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو علمی بنیادیں بہت زیادہ حاصل ہو گئی. حالانکہ حضرت خود بھی عالم تھے، مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کسبی علوم جو ہیں، مطلب ان کی اپنی ایک بات ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے. تو حضرت کے پاس یہ چیز پوچھوں گی بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اس کی بنیادیں ماشاءاللہ مزید مضبوط کر دی. اس کے بعد پھر حضرت اس کے بعد پھر جو ہے نا، مطلب یہ حضرت کے جو ہے نا، وہ یہ ہوا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر ان چیزوں کو نافذ کر دیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر التصنیف ہونے کے لحاظ سے مختلف شعبوں میں ان حضرات کے علم کو پھیلا دیا. تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ صاحب کے وقت سے جو مجددیت کا جو فیض ہے وہ ہندوستان کی طرف چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے بنیادی کام یہاں پر ہوا. اور اس کی میں نے جو زبردست بہترین مظاہرہ جو دیکھا، وہ میں نے جرمنی میں دیکھا، کہ جہاں میں عربوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، ان کے حلقوں میں بیٹھا ہوتا تھا، اور کسی بھی موضوع پہ وہ کام کرتے تھے، بات کرتے تھے. تو کسی وجہ سے جب ان کا آپس میں کوئی بات یعنی اختلافی ہو جاتی آپس میں، تو بہت سخت اختلاف کرتے، چہرے سرخ ہو جاتے، رگے تن جاتی، یعنی ایسا نظر آتا جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے. तो उस वक्त मुझे हज़रत तानवी मामा साहब का कोई मलफूज याद आ जाता बिल्कुल उसी के मुताबिक, तो मैं हाथ बुलंद कर लेता, कहते इंदी तालिक, तो वज़रात मुझसे पूछते कि ये क्या बात है। मैं अपने टूटी फूटी जुबान में हजरत का मलफूज का तर्जुमा उनके सामने पेश करता, और वो ऐसा होता जैसे जख्मों के ऊपर कोई मरहम रखते हैं, और फौरन दोनों तरफ कहते इन दखा क्या शेख, और बात ख़त्म हो जाती है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, यानी हर हफ्ते कोई ना कोई इस किस्म की बात होती थी, दो या तीन दफा या एक दफा। तो उन हजरात को ये अंदाजा हो गया कि शायद मैं कोई बड़ा लामा हूं जिनको सारी बातें मालूम है, तो मुझे शेख शेख कहने लगे और तो बहुत कदर करने लगे, मशवरे लेने लगे। फिर मैंने मुनासिब समझा कि अब इनको बात बताऊं कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी ज़रा मौका दे ताकि मैं भी कुछ बात करूँ। कि शेख हमारा तो खुद दिल चाहता है कि आपसे कुछ सुने, लेकिन हमारा कानून यह है कि बात अरबी में होगी, यानी जो मतलब मेरे साथ तो उनने ये मुआहदा किया था ना कि हम अरबी में बात करेंगे, तो आप अरबी जानते हैं इतना कि समझ लेते हैं, और हम अंग्रेज़ी इतना समझ लेते हैं, तो आप अंग्रेज़ी में बात करें तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह हमारी बात चलती थी आपस में। लेकिन उस दफ़ा उन्होंने कहा कि हमारा कानून चूँकि ये है कि बोलने वाला अरबी में बोले, तो ये चूँकि आपके लिए मुश्किल है, आपने बात आप बताया थी बात, तो एक इसका क्या होगा। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, कोशिश कर लूँगा, टूटी फूटी अरबी जितनी भी मुझे आती है मैं इसमें बात कर लूँगा। उन्होंने कहा बस फिर तो बहुत ठीक है। तो उस दफ़ा मैंने तसव्वुफ़ के, उन्होंने बल्कि मुझसे पूछा कि किस मौजू पे बात करें, मैंने कहा तसव्वुफ़। तो उछल पड़े, तसव्वुफ़ किस किस तरह बात करें, कौन सी बात करेंगे। तो मैंने कहा कि अभी बताऊं या बाद में बताऊं, कहते अच्छा ठीक है बस सही है। उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि शेख शब्बीर इंशाल्लाह तसव्वुफ़ के ऊपर बात करें, ये उनके लिए एक नियम मौजू था। तो उस पर उनने ज़्यादा बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया, और मेरे ख्याल में कुछ और लोग भी जो सुनने वाले थे आ गए। अगली दफ़ा, उस दफ़ा मैंने तकरीबन 20 मिनट बयान किया था तसव्वुफ़ के ऊपर, और उसमें मैंने पहले ही यही बात की। मैंने कहा आप हजरात समझते हैं शायद ये मेरी बातें हैं, ये मेरी बात ही नहीं है। हिंदुस्तान में एक आलिम गुजरे, उनका नाम था शेख अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह, ये उनकी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अलबत्ता तर्जुमा मैं कर दूँ। तो अबू हमाम वहाँ एक दहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन दिनों मेहमान आए थे, तो उसने कहा नाम अंत सही वो कान आलिम जईद। वो कहते हैं हमें ये पता है कि असल इल्म अल हिंद के पास है, ये असल बात है, ये जो मैं कहना चाहता था। कहते हैं ये हमें भी पता है कि असल इल्म अल हिंद के पास है, हमारे पास सतही उलूम है। ये कौन कह रहा था, जो उस महफिल के सबसे बड़े सीनियर आदमी जो इनमें सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे ज़्यादा, वो बात कर रहे थे कि हाँ हमें भी मालूम है। ये वो गवाही है कि जिससे पता चलता है कि ये उलूम हिंदुस्तान मुंतकिल हुए हैं, ये उलूम हिंदुस्तान मुंतकिल हुए। तो फिर ऐसे हुआ कि उनमें माशाल्लाह जब 20 मिनट की बात मैंने की तो सब ने कहा शेख अगर ये तसव्वुफ़ है तो हम सब सूफी हैं। मैंने कहा बस ठीक है आप सूफी। खैर अगली दफ़ा गालिबन 2-3 हफ्ते के बाद फिर मैंने कहा कि मैं फिर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा किस मौजू पर, मैंने कहा तकलीद के मौजू पर। तो ये भी उनके लिए टच मौजू था, लेकिन बहरहाल उन्हें इजाज़त दी। मैंने उस दफ़ा भी तकरीबन 20 मिनट की बात की तकलीद पर। उसका फ़ायदा ये हुआ तकरीबन कुछ दिनों के बाद उनका जो सदर जलसा थे शेख समीर मोदी, वो सुबह सवेरे मेरे पास आए फजर के नमाज से पहले, और घंटी बजाई। मैंने कहा इस वक्त कौन आया हुआ है। खैर इंटरकॉम पे मैंने पूछा, कहते मैं आपके साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है या बिस्मिल्लाह। सुबह ऊपर आए और फिर हमने नमाज़ पढ़ी। फिर कहते हैं असल में मैं इसलिए आया था कि आपके उस बयान से मैं बड़ा मुतासर हुआ था, मैं भी अब मुकल्लिद बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे मशवरा दें, क्योंकि मैं हनफी तो नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास अहनाफ की किताबें भी नहीं हैं और अहनाफ के उलमा भी नहीं है। वो थे फ़लस्तीन के थे लेकिन फिर उर्दन में थे। मैंने कहा था कि सब हनफी बन जाओ, कहते नहीं। तो मैंने कहा अब भी नहीं किया था, ये तो इलाकाई चीज़ है। आपके यहाँ चूँकि अहनाफ के उलमा नहीं है, अहनाफ की किताबें नहीं है, आपके यहाँ चूँकि शवाफ़ी की किताबें भी हैं, शवाफ़ी के उलमा भी है, तो मेरा मशवरा यह है कि आप शाफ़ी मसलक अख्तियार कर लें। तो उसके बाद मैं शाफ़ी मसलक अख्तियार किया। अलगरज ये कि हमारे बुज़ुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें सिखाया और जो बताया है वो बहुत ज़्यादा अहम है। यही बात माशाल्लाह मैंने फिर मौलाना सूफ़ी इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह को और मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब उनको बताया कि हज़रत हमारी सुस्ती कि हमने अपने उलूम उन तक नहीं पहुँचाए, अपने बुज़ुर्गों के उलूम उन तक नहीं पहुँचाए, ये हमारी सुस्ती है, वरना वो तो तैयार बैठे हैं। तुमने इसके साथ इतफाक़ किया कि हम बिल्कुल सही है। तो ये जो हज़रत की जो किताब है अबकात, पता नहीं किस कोने में पड़ी हुई थी, शायद इसके बारे में बहुत कम जानने वाले होंगे, लेकिन इतने ज़बरदस्त किताब है, इसके अंदर ऐसे उलूम हैं और ऐसे इश्कालात के जवाबात के लिए बुनियादें हैं कि हम तो सही बात है बड़े हैरान हुए कि अभी तक इसके बारे में जानते क्यों नहीं थे। हाँ जी, इस तरह मुझे सानी रहमतुल्लाह के मकतूबात शरीफ में जो उलूम के समंदर है उसके बारे में भी हमें इलम नहीं था। हाँ जी, शाहउल्लाह रहमतुल्लाह की जो किताबों में जो माशाल्लाह उलूम छपे हुए हैं उसका भी हमें इलम नहीं था। तो अफसोस आता है कि हम लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ क्यों नहीं है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि वो हफ्ते के दिन मसनवी शरीफ का दर्स होता है और पीर के दिन सवालों के जवाब दिए जाते हैं तसव्वुफ़ से मुतालिक, और मंगल के दिन आरिफ़ाना कलाम होता है जो कि मुख्तर साहब का तरीका था, और बुध के दिन हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह का, और जुमेरात को यही होता है। शाहउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुकम्मल हो गई है, वो तो हो चुकी है, और काकासिब रहमतुल्लाह अलैह का भी।